सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तीर्णये जिनेणमिं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग के द्वार के बाद अभी उसकी चूली का देख रहे हैं हम। ये अपना अनुभाग का विषय चल रहा है ना, हम यहाँ पृष्ठ संख्या 96 पर आ गए, 96। देखो क्या बात चल रही थी, स्पर्धक का स्वरूप बता रहे हैं, स्पर्धक किसे कहना, वर्गणा वर्ग किसे कहना, उसकी बात चल रही थी। तो हमने तो देखा था कि अविभाग प्रतिच्छेद कितना होता है, तो किसी परमाणु में जघन्य से जघन्य अनुभाग है और किसी अन्य परमाणु में थोड़ा ज़्यादा अनुभाग है, क्योंकि हमने देखा था ना वर्गणा वर्गणा प्रति एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा होता है, तो प्रति वर्गणा जितना इन्हें वर्गणा है ना उसके वर्गों में, वर्गणा तो वर्गों के पुंज को कहते हैं, परंतु पहली वर्गणा के वर्ग में जितना अनुभाग है और दूसरी वर्गणा के वर्ग में जितना है उसमें जो डिफरेंस है उसी को एक अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं जगन्य वर्गणा में, तो कहते जीव राशि अनंत गुणे, नहीं नहीं वो जीव राशि से अनंत, जीव राशि से अनंत गुणे उसकी बात हो गई थी। नाइन्टी टू पेज पर उन्होंने लिखा था, उनमें से सर्वमंद अनुभाग से संयुक्त परमाणु को ग्रहण करके वर्ण गंध रस को छोड़कर केवल स्पर्श का ही बुद्धि से ग्रहण कर उसका विभाग रहित छेद होने तक प्रज्ञा के द्वारा छेद करना चाहिए। यानी स्पर्श गुण की या स्पर्श की पर्याय की बात चल रही, वो एक दूसरे के साथ जो बंधे उसकी अपेक्षा क्या स्पर्श, परमाणु परमाणु है ना, मंद अनुभाग तो फल देने की शक्ति, अति मंद अनुभाग स्पर्श का ही लिया उन्होंने, नहीं वो स्पर्श की बात क्यों उठाई वो नहीं समझ में आ रहा,
क्योंकि
वो स्पर्श के कुछ खंड करने मुझे भी ख्याल में नहीं आए बराबर। अनुभाग के साथ स्पर्श का क्या संबंध लगाया मुझे भी पता नहीं चला। नहीं, ये स्पर्श के उन्होंने क्यों अविभाग प्रतिच्छेद बनाए? तो स्पर्श का विभाग रहित छेद होने तक ऐसा लिया उन्होंने। आपको मुझे समझ में नहीं आया वो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे 96 पृष्ठ पर। यानी हमने देखा था कि अविभाग प्रतिच्छेद जितने हैं, अभी जघन्य में जघन्य कितने हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणे हैं। तो उस वर्ग को कहते हैं, उसको परमाणु को वर्ग कहते हैं। ऐसे जिनमें जिनमें समान अनुभाग पाया जाता है, ऐसे सभी परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहा। उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक वाले परमाणुओं के समूह को दूसरी वर्गणा, फिर तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसे अनंत वर्गणा, जो अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत विभाग, इतनी वर्गणाएं होती है। उसका समूह जो है, एक एक से बढ़ते हुए अविभाग है ना, तो उसके समूह को यहाँ हमने स्पर्धक कहा। फिर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक। विशेषता क्या है? पहले स्पर्धक के पहले वर्गणा से उसमें जितना वर्ग है, उसके दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा के वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना होगा। ये बात यहाँ मुख्य है। अब इसी को आगे समझा रहे हैं। अभी शंका या 96 पृष्ठ पर आएंगे। चूंकि प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह से द्वितीय वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाग प्रतिच्छेदहीन है। हमने देखा था पहली वर्गणा में जितने वर्ग है मल्टीप्लाइड बाय उसका अविभाग प्रतिच्छेद, दूसरी वर्गणा में परमाणु की संख्या कम होती है, अविभाग प्रतिच्छेद तो एक से ही बढ़ता है, इसलिए टोटल अगर करेंगे उसकी तो वो कम होती है। हमने जैसे देखा था, हमने 8 मान लिया है अविभाग प्रतिच्छेद और उसके 4 परमाणु लिए, तो 8 × 4 = 32 हो गया टोटल। और दूसरी वर्गणा में 9 × 3 = 27 हो गए, तीसरे में 10 को डबल किया 20 हो गए, इस तरह से। तो अविभाग प्रतिच्छेद हीन होता जाता है। पूरी वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद लिया उन्होंने, इसलिए पूर्वोक्त स्पर्धक का स्वरूप नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्रम वृद्धि अथवा क्रम हानि का अभाव है। विशिष्ट क्रम से नहीं है, उसको कुछ भी प्रोपोर्शन हो जाता है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि समान धन वाले परमाणु पुंज को अप्रधान करने वाले भाव विधान अनुयोग द्वार में एक श्रेणी वृद्धि को छोड़कर नाना श्रेणी रूप वृद्धि व हानि का ग्रहण नहीं किया गया है, और एक श्रेणी से क्रम वृद्धि न हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह पाई जाती है। यानी वो परमाणुओं के ग्रुप को यहाँ नहीं लेना, प्रति परमाणु जितना अविभाग प्रतिच्छेद है, एक परमाणु की बात लेना, तो उसका अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता बढ़ता चला जाएगा ऊपर तक, एक एक परमाणु का, तो उसकी अपेक्षा यहाँ कथन करने में आ रहा है। तो ये क्रमिक वृद्धि होती है उसमें। शंका, भाव विधान अनुयोग द्वार में समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा क्यों नहीं की गई है? ये समान धन वाले उसी को हमने वर्गणा कहा, तो उसको यहाँ गौण क्यों रखा है? उसका समाधान, बद्धानुभाग की कांडक घातों के बिना उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा वृद्धि व हानि नहीं होती। इस बात के ज्ञापनार्थ वहां समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा नहीं की गई है। जिसका अनुभाग बंधा है उसको बद्धानुभाग कहते हैं। तो जब वो अनुभाग कांडक घात होता है तो ही उसमें वृद्धि और हानि होती है, या उत्कर्षण अपकर्षण से भी होती है ना, तो कांडक घातों के बिना वो नहीं होती है। इस बात के ज्ञापनार्थ वहां समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा नहीं की गई है। शंका, उसका ज्ञापन किस लिए कराया जा रहा है? उसका समाधान, एक परमाणु में स्थित अनुभाग की स्थान रूपता बतलाने के लिए उसका ज्ञापन कराया जा रहा है। एक एक परमाणु की अपेक्षा यहाँ स्थान कहेंगे, जिसे हमने योग में पूरे को मिलकर स्थान कहा था, वैसे यहाँ नहीं है। कल मुझे भी ऐसा लगा था कि पूरे को मिलकर अनुभाग स्थान कह रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखो, आगे बढ़ेंगे हमें, भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभाग स्थान नहीं हो सकता। अलग अलग परमाणुओं के ग्रुप को मिलकर हम अनुभाग स्थान नहीं कह सकते, ये बात बताना चाहते हैं। योग स्थानों में तो हमने असंख्यात जो प्रदेश है जीव के, उनमें अलग अलग योग होता है, तो उसकी अपेक्षा सबको मिलकर एक योग स्थान कहा था। यह हाँ, समान अनुभाग वाले सभी योगों योग वाले प्रदेशों को इकट्ठा लिया था हमने, और फिर दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा ऐसे वहां पर कहा था, तो वहां सभी प्रदेशों को मिलकर नाम दिया था कि एक योग स्थान है। यहां दूसरी बात है, वो क्या डिफरेंस है, वो कहते हैं भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभाग स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार से एक ही अनुभाग स्थान में अनंत स्थान रूपता का प्रसंग आता है। यानी एक स्थान में कितने परमाणु हो गए, अनंत हो गए, और हर एक के अपने अपने अलग अलग अविभाग प्रतिच्छेद, अपना अनुभाग अलग अलग होगा, तो उसको अनंत, हाँ उसको वर्गना कहा, परंतु अभी स्थान की बात है, अनुभाग स्थान की बात। हाँ, अभी यहाँ परमाणु को स्थान क्यों कह रहे, उसकी चर्चा चल रही है। यानी हमने देखा ना, एक एक वर्गना में जो एक एक परमाणु है, वो जघन्य से उत्कृष्ट तक ऐसे अलग अलग अनुभाग है। यानी जो उत्कृष्ट अनुभाग वाला है, उसमें वो सारे गर्भित है ना जघन्य वाले, तो प्रति वर्गणा के जो वर्ग है उसमें एक 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 अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ता हुआ जो पाया जाता है, उसकी अपेक्षा यहाँ स्थान कहेंगे। परमाणु परमाणु में सभी परमाणु एक साथ बंधे हैं, तो उसको हम स्थान नहीं कह रहे यहाँ पर, उसी की चर्चा चलेगी अब यहाँ। यदि कहा जाए इस प्रकार से योग स्थान के साथ व्यभिचार होना संभव है, यानी वो फिर उसका अपवाद हो जाएगा, या वहां एक रूल लग कहते यहां दूसरा हो जाएगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है। हमने योग स्थानों में क्या देखा था, सभी जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है ना जीवों के, उन सभी में जितना योग है अलग अलग प्रदेशों में, वो सबकी वर्गणा स्पर्धक ऐसा करके उसको सबको मिलकर योग स्थान नाम दिया था। अब यहाँ सभी परमाणुओं को मिलकर अनुभाग स्थान नहीं कह रहे हैं, तो क्यों नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य की शक्ति से योग स्थान की एकता में कोई विरोध नहीं है। क्या कहते हैं, योग स्थान कह दिया है तो एक जीव के एक समय में जो हो सकता है, वो एक जीव के ही वो तो असंख्यात प्रदेश है, इसलिए योग स्थान तो घटित हो सकता है। जीव प्रदेशों के भेद से भी स्थान भेद होना संभव नहीं है। जैसे हमने योग स्थान में देखा था जीव प्रदेशों पर घटित किया था, ऐसे कर्म परमाणु बंधे हैं तो एक एक प्रदेश की अपेक्षा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो वह रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता। योग स्थान और अनुभाग स्थान में वो सेम बेस नहीं है, वहां तो एक जीव के प्रदेश है, और सभी असंख्यात प्रदेशों में मिलकर जो योग होता है उसको योग स्थान कहा था, यहाँ वैसा नहीं है। भिन्न भिन्न परमाणु पर घटित करेंगे, अलग अलग योग स्थान कहेंगे उसको। देखो, जीव प्रदेशों के भेद से भी स्थान भेद होना संभव नहीं। कौन सा स्थान भेद? अनुभाग स्थान भेद, क्योंकि अवयवों के भेद से द्रव्य भेद असंभव है। शंका, खंड स्वरूप से स्थित कर्म परमाणुओं में चूंकि एक रूपता विद्यमान है, अतएव समान धन वाले उनका भी ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? यहाँ कहते हैं कि कर्म परमाणु अलग अलग है, परंतु उनमें अनुभाग की तो समानता है, तो उसके द्वारा तो उसको ग्रहण करना ठीक है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता नहीं है। एक द्रव्य नहीं है वो, भिन्न भिन्न द्रव्य है ना, परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्य, यदि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता मानी जाए तो फिर भेद होना अशक्य है। हरेक की अपनी अपनी अलग अलग अस्तित्व है ना, सत्ता अलग अलग है, उसका अनुभाग भी अलग अलग है, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता है। जैसे जीव, आकाश व धर्म अस्थि का है। क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमने योगस्थान में घटा दिया था कि द्रव्य तो एक है और उसके प्रदेशों में हमने कथनचित भेद करके उस पर योगस्थान घटित किया था। अब कर्म परमाणुओं में अगर ऐसा ही मानेंगे तो फिर उसका भेद करना अशक्य हो जाएगा। परंतु ये दो भिन्न द्रव्यों की बात चल रही है। तो जीव, आकाश और धर्मास्तिकाय के जैसे प्रदेश उससे भिन्न नहीं किए जाते, वैसा यहाँ दोष आ सकता है। दूसरी बात, स्पर्धक प्ररूपणा एक श्रेणी का ही आश्रय करके स्थित है, क्योंकि इसके बिना योग स्थान में स्पर्धकों के अभाव का प्रसंग आता है। ये तो इन जनरल स्पर्धक की बात है। स्पर्धक हम किसको कहते हैं कि एक श्रेणी यानी पंक्ति रूप, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ता हुआ, ऐसा जो हमने वर्गणाएं देखी थी अनंत, उसके समूह को स्पर्धक कहते हैं। यदि स्पर्धक की ऐसी डेफिनेशन न हो, श्रेणी प्ररूपणा है ना, उसमें कितना कितना क्या डिफरेंस है, तो वो योग स्थान में भी ये स्पर्धक नहीं होने का प्रसंग आएगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि योग स्थान में सूत्र प्रसिद्ध स्पर्धक प्ररूपणा पाई जाती है। एक योग स्थान में हमने देखा था स्पर्धक है, जगन्य स्पर्धक है, उसमें वर्गणाएं, उसमें वर्ग वगैरह वगैरह होती है। यदि कहा जाए कि ऐसा स्वीकार करने पर अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है, यह कथन विरोध को प्राप्त होगा, सो भी नहीं है, क्योंकि एक वर्ग के भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वर्गणात्व सिद्ध है। क्या कहते हैं, अभी हमने क्या देखा है, अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है, और योग स्थान में कितने वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है, याद है, असंख्यात, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, इतनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, स्पर्धक की डेफिनेशन अभी हमने क्या देखी, अनंत वर्गणाओं के वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है। अभी यहाँ एक वर्ग को ही वर्गणा कह दिया, पहले उन्होंने बताया था द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा, दोनों ही अपेक्षाएं बताई थी, एक वर्ग को भी वर्गणा कह सकते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ ये बात घटित हो सकती है। वहां तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग वर्गणाओं का एक स्पर्धक कहा था, परंतु यहाँ वर्गों को ही वर्गणा कह सकते हैं, तो अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक है, ऐसे जो हम यहाँ कथन करते हैं उससे कोई विरोध प्राप्त नहीं होता। शंका, भिन्न द्रव्य में रहने के कारण यदि अनुभाग की एकता स्वीकार नहीं की जाती है तो फिर एक श्रेणी को भी स्पर्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भिन्न द्रव्य वृत्तित्व की अपेक्षा उसमें कोई भेद नहीं है। आप कहते हैं दो भिन्न द्रव्यों में अनुभाग को लेकर हम उसको स्पर्धक घटित नहीं कर सकते, श्रेणी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग अलग द्रव्यों पर घटित होता है, उस अपेक्षा से तो इसमें कोई भेद नहीं है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्रमशः एक श्रेणी रूप से अवस्थित समस्त विभाग प्रतिच्छेद एक अंतिम परमाणु में पाए जाते हैं। श्रेणी रूप से अवस्थित है, एक एक बढ़ता हुआ विभाग की अपेक्षा समस्त विभाग प्रतिच्छेद अंतिम परमाणु में तो मैक्सिमम है, तो उसमें एक एक बढ़ते हुए सभी अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के स्पर्धक रूपता संभव भी नहीं है, क्योंकि अंतिम परमाणु में रहने वाले उक्त अविभाग प्रतिच्छेदों को ग्रहण करने पर पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है। हमने क्या देखा था, अंतिम परमाणु जो है उसमें तो सभी अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको हमने बता दिया, तो फिर अलग अलग एक एक वर्गणामे वाले वो अन्य अन्य द्रव्यों को वहां नहीं लेना, क्योंकि एक बार उसकी बात हो गई है, वहां बता दिए सभी अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। यदि हम दोबारा कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा, अथवा भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के एक होने का विरोध है। शंका। यदि ऐसा है तो एक व नाना श्रेणी स्वरूप से प्रदेश रचना प्ररूपना किस लिए की जाती है? अविभाग की तो मान ली उन्होंने, तो अभी कहते हैं प्रदेश रचना तो बता दिया है, श्रेणी रूप से होती है, हमने देखे थे नीचे में अधिक प्रदेश होते हैं, ऊपर प्रदेश घटते चले जाते हैं, तो ये प्रदेश की रचना क्यों बताई है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक परमाणु में अवस्थित इसी अनुभाग स्पर्धक के अविनाभावी अनुभाग प्रदेशों की प्ररूपणा द्वारा उक्त रचना की प्ररूपणा की गई है। हमने तो देखा था ना नीचे के जो स्पर्धक है, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा में जो वर्ग है उसका अविभाग प्रतिच्छेद मिनिमम है और वहां प्रदेशों की जो संख्या है वो ज्यादा है। दूसरी वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़ता है और प्रदेशों की संख्या थोड़ी कम होती है, एक चय से कम होती है, तो वहां उसकी प्ररूपणा की है। दूसरे, जिसके व्यतिरेक का निश्चय नहीं है उसके अन्वय के विषय में निश्चय नहीं हो सकता। ये जो उसमें रचना अलग अलग बताई है, व्यतिरेक यानी कुछ डिफरेंस है तो भी बताया है ना, पहली वर्गणा से दूसरे वर्गणा में प्रदेश कम है, फिर और कम है और कम है, ये व्यतिरेक हुआ, और अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ता हुआ ये व्यतिरेक हुआ। यदि व्यतिरेक को नहीं हम समझ सकते तो अन्वय कैसा समझेंगे? जैसे हम द्रव्य और पर्याय पर घटित करेंगे, पर्याय एक 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 समय वाली है, पर्याय उसी को कहते ना, एक से जो दूसरी है वो भिन्न है, वही नहीं है, वैसी हो सकती पर वही नहीं है पर्याय में। तो जब ये सारे व्यतिरेकों को समझेंगे तो उसमें अन्वय रूप से द्रव्य को समझ सकते हैं। वैसे यहाँ अविभाग प्रतिच्छेदों में और प्रदेशों में जो डिफरेंस है उसको समझे बिना स्पर्धक का स्वरूप हमें ख्याल में नहीं आएगा। ये सर न्याय की भाषा है ना, तो अभी ये पहले वाली संदृष्टि फिर दोबारा समझाएंगे। इस प्रथम स्पर्धक को पृथक स्थापित करके, देखो हमने कहां से छोड़ा था इसको जरा लिखते हैं, क्योंकि बीच में शंका समाधान बहुत हुआ। 94 पृष्ठ पर ये बीच वाला बड़ा पैराग्राफ है, उसके पहले वहां आने के पहले हमने 93 पृष्ठ पर अंत में देखा था कि एक वर्ग की जो संदृष्टि है, हमें इसको अंक संदृष्टि यानी काल्पनिक संख्याओं से समझाना चाहते हैं, तो 8 क्या हुआ, एक परमाणु उसमें अविभाग प्रतिच्छेद 8 है। हमने सारे कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया था, उसमें से जिसमें 8 वाला अनुभाग है उस सभी परमाणुओं को हमने साइड बाय साइड रख दिया, तो हमने 4 बार रखा 8 8 8 8। अब ये तो सब समाप्त हो गए, परमाणु 8 वाले परमाणु समाप्त हुए। हमने उसी ग्रुप में से अभी 9 अनुभाग वाले परमाणुओं को इकट्ठा किया और उसको हमने 9 9 9 रखे, उसमें कम होते हैं ना परमाणु, तो इसलिए 3 बार 9 लिखे। वो टेबल में गलत है क्योंकि नीचे देखो प्रत्यो 9 9 9 3 बार है फुट नोट में, तो ये 3 बार 9 ठीक है। यही संदृष्टि उसमें भी आई है समय ज्ञान चंद्रिका में, गोमट सार में भी, वहां तो 4 बार 8 और 3 बार 9 और 2 बार 10 और 1 बार 11 ऐसा ही है। तो अभी हमें ये संदृष्टि समझ में आएगी। एक्चुअली वो हमें ऐसा लगता है ना, वो 8888 ऐसा नहीं है, 8 8 8 4 बार लिखा है, उसमें एक बड़ी लाइन बीच में ड्रॉ करो तो अच्छा है। एक बार का 9 निकालना है। अभी वो जो मूल प्रति में था इसलिए उन्होंने रखा है, और नीचे फुटनोट में लिखा है, देखो नीचे, अन्य प्रतियों में 3 बार ही 9 पाया जाता है, ऐसे अनेक प्रतियों के आधार से धवला शास्त्र लिखा है ना, तो उन्हें तो मूल जो बात है वो लिखेंगे और फिर जो डिफरेंस है पाठांतर में हाँ वो भी लिखेंगे। अभी अपने मूल पृष्ठ पर आते हैं 98 पर। इस प्रथम स्पर्धक को पृथक स्थापित करके पूर्वोक्त परमाणु पुंज में से एक परमाणु को ग्रहण कर, ये उन्होंने 11 तक बता दिया, देखो 8 8 4 बार लिया, फिर 9 9 9 3 बार लिया, 10 और 10 वाले लिए वो 2 बार रखा और फिर 11। ये अभी संदृष्टि देखना, 11 के ऊपर 0 0 0 लिखा है, वो तो अंतर है, क्योंकि हमने देखा था ना, एक अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे पहली वर्गणा में, एक एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद कितने थे, 8, जैसे मूल में कितने होते हैं, जीव राशि से अनंत गुणे, तो 8 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो एक एक प्रतिच्छेद बढ़ते हुए अगर हमको जाना है और डबल करना है तो 8 बार लेना पड़ेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 8 बार हो गए तभी जाके डबल हो जाएगा। परंतु यहाँ कहाँ तक है, 11 तक ही है, क्योंकि सिद्धों से अनंत में भाग इतने हैं वर्गणा, अविभाग प्रतिच्छेद जो जगन्य अविभाग प्रतिच्छेद वो तो जीव से अनंत गुणा है, जीव राशि से, जो हमने 8 कहा, और वर्गणाओं की संख्या यहाँ 4 ही ली है, क्योंकि वो सिद्धों से अनंत विभाग है, दोनों कहलाएंगे तो अनंत, परंतु उसका प्रमाण अलग है। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आगे की स्पर्धक कब शुरू होती है, जब अनुभाग 16 हो जाएगा, तो इसलिए बीच में अंतर है, इसलिए यहाँ 0-0 4 बार लिखा है संदृष्टि में। फिर जो दूसरा कॉलम है, लेफ्ट से दूसरा, नीचे से ऊपर पढ़ना है ना, तो वहाँ 16 अनुभाग हो जाता है, फिर अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ेगा, 16 से 17 होगा, 17 से 18, 19 होगा। अब यहाँ 16 तो एक बार लिखा है, परंतु समझने के लिए अगर लिखना है तो 16 को 4 बार, 17 को 3 बार, 18 को 2 बार और 19 को एक बार लिखना पड़ेगा समझने की दृष्टि से। अब हम आगे भी ऐसे ही संदृश्य, डबल डबल होता है ना, यानी 8 से 2 गुना हुआ 16 हुआ, 8 से 3 गुना हुआ 24 हुआ, वहाँ से तीसरा स्पर्धक, 8 से 4 गुना 32 होता है वहाँ से चौथा स्पर्धक, 40 होता है वहाँ से पांचवा स्पर्धक, इस तरह से लेना। 16 भी 4 बार, ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो टेबल बनाए हैं 5 गुणानियों का ऐसा अलग अलग, तो उसमें 4 बार 16 लिखा है, 3 बार 17 लिखा, हर एक को इसी तरह उन्होंने बता दिया। और वहाँ फिर दो दो स्पर्धकों की एक गुणहानि बताई, वो तो बाद में आएगी। हाँ चौरानवे में 3 बार लिखा है, हाँ देखो, इसीलिए यहाँ ये बाय मिस्टेक हुआ है, हो ना। अब देखो फिर पढ़ती हूँ मैं 98 पृष्ठ पर, इस प्रथम स्पर्धक को पृथक स्थापित करके, यानी वो 8, 9, 10, 11 वाले वो पृथक स्थापित किया, पूर्वोक्त परमाणु पुंज में से एक परमाणु को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर करके द्वितीय स्पर्धक का अन्य वर्ग उत्पन्न होता है, यानी वो 16 वाला वर्ग उत्पन्न होगा ऐसा कहते हैं, यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद दुगुणे पाए जाते हैं, अंतर बड़ा है, क्योंकि पूरी जीव राशि से अनंत गुणा पूरी टोटल है, और उसमें से कितना ऑक्यूपाई किया, केवल सिद्धों के भी अनंत विभाग, अंतर बहुत बड़ा है, अंतर ही अनंत गुणा है, जितने वर्गणा है उससे अनंत गुणा तो अंतर होगा। यहाँ तो 4 और 8 डबल दिखाया है, अन्य वर्ग उत्पन्न होता है संदृष्टि में, इसका प्रमाण है 16। इस क्रम से अभव्य सिद्धिकों से अनंत गुणे व सिद्धों से अनंत वे भाग मात्र समान धन वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। तो यहाँ भी 4 बार 16 लिखना है, लिखेंगे तो दोनों को 4 बार, परंतु पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा में जितने परमाणु हैं वो क्रम से ऊपर हीन होते चले जाएंगे, तो यहाँ तो वो संदृष्टि में दिखा नहीं सकते, सबको 4 ही बार लिखेंगे पहली वर्गणा। परंतु ओरिजिनल में क्या कैसे समझना है, प्रति वर्गणा थोड़ा थोड़ा कम होता है, कितने ही स्पर्धक जाके वो प्रमाण आधा हो जाएगा, कितने ही स्पर्धक जाके, अनंत स्पर्धक जाके, तब जाके उसको कहेंगे हम गुणहानि, उसकी बात अभी निकली नहीं है। यानी स्पर्धक के प्रति अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना होता है, परंतु परमाणुओं के प्रमाण थोड़े कम होता है। क्षय घटेगा ना, एक एक वर्गणा के प्रति क्षय घटता चला जाता है। फिर भी दिखाने के लिए यहां 16 चार बार लिखेंगे, 17 तीन बार लिखेंगे, इस तरह। द्वितीय स्पर्ध की प्रथम वर्गणा होती है, यहां तक पढ़ा था। अभी नीचे से पांचवी लाइन में, इसे प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के ऊपर यानी वो 11 के ऊपर अंतर को लांग कर स्थापित करना चाहिए। अभी हमें तो आड़ा ही रखना लिखना पड़ता है द्वितीय वर्गणा तृतीय वर्गणा, परंतु कैसे हम लिखेंगे, एक के ऊपर दूसरी, नीचे से लेना है ना। तो यहाँ पहले ये हमने 8 8 8 8 लिखा, फिर 9 9 11 11, फिर अंतर, फिर यहाँ पर ये 16 16 लिखेंगे, फिर 17 18, फिर इस तरह से नीचे से ऊपर तक रचना होगी। परंतु यहाँ अलग अलग कॉलम करके बताया है समझने के लिए, और एक पेपर पर पूरी ऐसी ऊर्ध्व रचना तो कर नहीं सकते हैं, तो ये समझने के लिए है ऐसा। तो अंतर को लांग कर स्थापित करना चाहिए, तो अंतर को लांग करने में उन्होंने फिर उसके साइड में रख दिया है। इस क्रम से वर्ग वर्गणाओं और स्पर्धकों को जानकर पूर्वोक्त परमाणु पुंज के समाप्त होने तक उत्पन्न कराना चाहिए। उन्होंने उतना ही बता दिया, 16 17 18 19, फिर अंतर को लांग कर पहले जो 8 था उससे तिगुणा हो गया 24 25 26 27, फिर अंतर को लांग कर फिर आगे वाला 32 33 34 35। इस प्रकार स्पर्धक रचना के किए जाने पर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र स्पर्धक व वर्गणाएं उत्पन्न होती है। एक स्पर्धक में वर्गणा की संख्या भी उतनी और नंबर ऑफ स्पर्धकों की भी संख्या उतनी। यहां अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित अनुभाग जघन्य स्थान रूप है। यहां यह संदृष्टि है जो अभी हमने ऊपर देखी, संदृष्टि वो है, वह सब जीवों से अनंत गुणा है। एक वर्गणा में वर्ग, हाँ सबका प्रमाण एक ही है। एक वर्गणा में नंबर ऑफ वर्ग या एक स्पर्धक में नंबर ऑफ वर्गणा है या टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक कितने हैं, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत विभाग। यहाँ जो उन्होंने लिखा है, देखो नीचे भी फुटनोट में क्या लिखा उन्होंने, अनुभाग ठाणम नाम चरिम फद्दय चरिम वर्गणाए एक परमाणु मिठिद अनुभाग अविभाग परिच्छेदक लावो। यानी चरम स्पर्धक में अभी यहाँ जो 51 नंबर आया है, यहाँ पर 51 उन्होंने लिखा है, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी में परमाणु तो उसमें बहुत है, उसके एक परमाणु में जो अनुभाग है उसको यहाँ जघन्य स्थान कहा, जघन्य अनुभाग नहीं कहा। जघन्य अनुभाग तो पहली वर्गणा के एक एक वर्ग में था, ये स्थान की बात चल रही है। जघन्य स्थान अनुभाग जघन्य स्थान रूप है, और वो कितना है अनुभाग, सब जीवों के अनंत अनंत गुण है। वही पहले में भी उतना ही कहा, अभी भी उतना ही कहा, परंतु वो अनंत का प्रमाण ज्यादा होगा। इस प्रकार एक स्थान में वर्गणा और स्पर्धकों को स्थापित करके अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करते हैं। वह अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा द रह गया, अविभाग प्रतिच्छेद वाला द रह गया। तीन प्रकार की है, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा। शंका, बिंदी लगाना उसको। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा के साथ वह चार प्रकार की प्ररूपणा क्यों नहीं कही गई है? अन्य भी होता है ना कि प्ररूपणा बताना, प्रमाण बताना, अल्पभूत आदि आदि, तो ये क्यों नहीं बताया? समाधान, नहीं, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेदों के अज्ञात होने पर उनके आधार का कथन करना विरोध को प्राप्त होता है। ऐसा मानकर अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा पहले ही कराए हैं। उनमें से वर्ग प्ररूपणा तीन प्रकार की है। अभी वर्ग का स्वरूप पहले बताएंगे। प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबोधत्व, इनमें से प्ररूपणा सुगम है, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करने से ही वर्गणा संज्ञा वाले अविभाग प्रतिच्छेदों का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। वर्ग संज्ञा वाले या वर्गणा वर्गण सन्निध, वर्ग को कहीं कहीं वर्गणा भी कहे मैं, हाँ दोनों ही नाम है उसके, वर्ग भी कहेंगे वर्गणा भी कहेंगे। अब प्रमाण का कथन करते हैं। यथा वर्गणा, हाँ हमने तो अलग है, परंतु यहाँ तो वर्ग को वर्गणा भी कहा है और उसी अपेक्षा से उन्होंने, हाँ अब उसमें प्रमाण कितना है तो बताते। यथा वर्गणाएं अनंत हैं, जो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी हैं और सिद्धों के अनंत में भाग मात्र है, ये प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हो गई। यानी एक वर्ग, एक स्पर्धक में भी वर्गणा इतनी कहेंगे और टोटल सभी स्पर्धकों की, सभी वर्गणाओं की टोटल भी उतनी हो जाएगी। अब अल्प बहुत्व कहते हैं। जघन्य वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है। हमने पहले देखा था ना, हाँ। उनसे उत्कृष्ट वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। अब यहाँ वर्गणा कहने पर वर्गणा का एक एक परमाणु समझना, क्योंकि वर्गणा का पूरा ही अविभाग प्रतिच्छेद तो क्रम से हीन जाता है, हमने देखा था। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत में भाग मात्र गुणकार है, कारण कि यहाँ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के जघन्य बंध का ग्रहण करने से वहां अवस्थित स्पर्धक का अंतर उपलब्ध होता है। ये जघन्य कहां पर है अनुभाग, उसकी बात चल रही है। हमने जघन्य का अल्पभूतव देखा था पहले, तो जघन्य में जघन्य सबसे पहले संज्वलन लोभ का नंबर लगाया था, मिनिमम पॉसिबल। नहीं, बंध, बंध की बात कर रहे हैं, बंध तो उसका नहीं होगा वहां पर। देखो ज्ञानावरण को लेना, हाँ बंध की अपेक्षा वो ज्ञानावरण को लेना, हमने सत्ता की अपेक्षा देखी थी। उन्होंने अनुभाग किसमें, कौन से प्रकृति में हीन होता है उसकी बात की थी वहां पर, यहां बंध की बात करें। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और करना, सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है। हाँ बीच वाले, हाँ यह प्ररूपणा एक श्रेणी का आश्रय करके की गई है, क्योंकि इसके बिना उत्कृष्ट वर्गणा की अपेक्षा अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणा में अनंत गुणत्व नहीं बन सकता। अब स्पर्धक प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा भी तीन प्रकार की है। प्ररूपणा, प्रमाण, कौमा देना है, और अल्पबहुत्व। प्ररूपणा सुगम है, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा से ही उसकी प्ररूपना हो जाती है। अब स्पर्धकों का प्रमाण कहते हैं। सर्वत्र अवस्थित संज्ञा वाली अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है। क्या कहते हैं? यानी सभी स्पर्धकों में वर्गणाओं का प्रमाण अवस्थित होगा, उतना ही होगा, उसकी संख्या फिक्स है। वे जघन्य बंध स्थान में अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे व सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र होते हैं। कौन? स्पर्धकों की बात है। प्रमाण की बात चल रही है। ये प्रमाण समाप्त हुआ। अल्प बहुत्व कहते हैं। ये हूर्य सरस्व चाहिए, बहुत्व। जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है। उनसे उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग, हाँ, स्पर्धक वो बराबर नहीं, वो ध नीचे की बाजू चाहिए, पहले आ गया है। उनसे उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्पर्धकों के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। ये बीच वाले सब ले लाए एक साथ। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है। स्पर्धक प्ररूपना समाप्त हुई। अब अंतर प्ररूपना तीन प्रकार है, प्ररूपना, प्रमाण और अल्पबहुत्व। प्ररूपना सुगम है क्योंकि बहुत्व स्पर्धकों की प्ररूपना से ही अंतर का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं? स्पर्धक अनेक है ना, तो उसमें अंतर आ ही गया, उसमें अंतर क्या गर्भित है, ऐसा कहते हैं। अंतर के बिना द्वितीय आदि स्पर्धकों की संभावना नहीं है। हमने देखा तो जितने अभी वर्गणाएं हैं, एक स्पर्धक में इतनी वर्गणाएं हैं, उसके बाद नियम से वहां अंतर होगा ही, तब जाके दूसरा स्पर्धक शुरू होता है। तो अनेक स्पर्धक है, इसका अर्थ ही अंतर भी है वहां पर। तो अंतर के बिना द्वितीय आदि स्पर्धकों की संभावना नहीं है क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अब प्रमाण कहेंगे। सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेदों से एक एक स्पर्धक का अंतर होता है। ये प्रतिच्छेदों से अंतर कैसा नापा उन्होंने? हमने क्या देखा था? अभी जो हमने संदृष्टि देखी थी, पहले 8 था अविभाग प्रतिच्छेद, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, फिर बाद में एकदम 16 हुआ। यहाँ तो 4 और 4 ही है, परंतु ओरिजिनल में देखेंगे तो कितनी वर्गणा होती है? सिद्धों के अनंत विभाग। और अविभाग प्रतिच्छेद कितना होता है? पहले वर्ग में हमने देखा था जीव राशि से अनंत गुणा। तो जीव राशि के जितने, क्योंकि हमको वो डबल होना चाहिए तभी दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाएगा। जीव राशि के अनंत गुणा वाला जो अनंत है वो डबल हो जाएगा, तब जाके वहां दूसरा स्पर्धक शुरू होगा। अगर हम 100 मानते हैं तो 100 से 200 हो जाएगा तो दूसरा स्पर्धक होगा, परंतु वर्गणाएं तो बहुत 10-20 ही हो गई है ना, तो बीच वाला ये बड़ा अंतर है। ये प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। अल्प बहुत्व नहीं है क्योंकि जघन्य स्थान के सब स्पर्धक समान पाए जाते हैं। जब जघन्य स्थान कह दिया तो सब जीवों के जघन्य स्थान में तो उतना ही हो स्पर्धक पाए जाएंगे। अब आधार में आधेय का उपचार करने से, आधार तो हम समझ जाते हैं, आधेय ने जिसको आधार देते वो आधेय, आधार और आधेय। जैसे हम द्रव्य और गुण में भी गठित करते हैं, द्रव्य आधार है, गुण उसके आधार से रहते तो हम कहेंगे उसके आधेय है। अंतर भी अवस्थित रहेगा, अंतर भी अवस्थित है क्योंकि 2 गुणा से 3 गुणा होता है, 4 गुणा नहीं होता है। यदि 4 होता तो डबल डबल अंतर। हाँ, अभी अभी आपने जो संदृष्टि देखी उसमें अंतर सबका समान है ना। हाँ, अब आधार में आधेय का उपचार करने से अविभाग प्रतिच्छेदों के आधारभूत परमाणु भी अविभाग प्रतिच्छेद कहे जाते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसके आधार से है? परमाणु के आधार से। तो परमाणु को ही अविभाग प्रतिच्छेद कह दिया। एक्चुअली वर्ग किसको कहते? तो अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को, परंतु वो तो परमाणु को ही हम वर्ग कहेंगे ना, क्योंकि उसका आधार क्या है? परमाणु है। तो यहां परमाणु को ही अविभाग प्रतिच्छेद कह दिया, इसलिए प्रदेश प्ररूपणा को भी अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा मानकर। प्रदेश प्ररूपणा का अर्थ क्या होता है? अभी तो हमने अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा बात देखी थी, आठ है, नौ है, दस है, ग्यारह होता है, परंतु आठ वाले परमाणु कितने हैं? तो उसको कहेंगे प्रदेश प्ररूपणा, नंबर ऑफ परमाणु। फिर दूसरी वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणु, तीसरी वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणु, उसको प्रदेश रचना कहेंगे, प्रदेश उसकी प्ररूपणा कहेंगे। उसको भी अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा मानकर यहां जघन्य स्थान में प्रदेश प्ररूपणा कहते हैं, वह इस प्रकार है। अभी यहां प्रदेश की प्ररूपणा करेंगे। यहां छह अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व। 256 से लेकर 9 तक वो करेगा, दिखता है। दो सौ छप्पन से लेकर 9 तक संदृष्टि में स्थापित कर इसके ऊपर अज्ञानी जनों के अनुग्रहार्थ छह अनुयोग द्वारों को कहते। इसके ऊपर यानी उस संदृष्टि के आधार से समझाएंगे। 256 से 9 तक कैसा स्थापित करेंगे? हमेशा हम गुनहानी गुनहानी देखते थे, 256 फिर वो आधी हो जाएगी, 128 हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 32 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और इसमें भी क्रम से इतना घटेगा ना, पहले कितने 16-16 घटेंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और लास्ट में एक एक घटेगा, 16-15-14 इस तरह से 9 तक। ये प्रदेश रचना ऐसी होगी, एक एक चय घटेगा, गुणहानि गुणहानि के प्रतिचय भी आधा होगा। अभी इस पर समझाएंगे। जघन्य वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश है, यह है बताया ना, प्ररूपणा हो गई। द्वितीय वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश है इस प्रकार, उत्कृष्ट वर्गणा तक ले जाना चाहिए, प्ररूपणा समाप्त हुई। आसान है ना? जघन्य वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश अनंत है, ये प्रमाण बता रहे, जो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे हैं और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक ले जाना चाहिए। हर एक का प्रमाण कितना है? सिद्धों के अनंत विभाग, अभिव्यं से अनंत गुणे। अभी उसमें भी कितने वेरिएशंस हो गए वो सब समझना, नीचे अधिक है ऊपर कम होते चले जाएंगे, इतना ख्याल में लेना। परंतु तो कथन ऐसा ही होगा, हर एक के लिए कथन क्या है? अभिव्यं से अनंत गुणे, सिद्धों के अनंत विभाग, प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। अब श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की, श्रेणी यानी प्रति वर्गणा में क्या डिफरेंस है वो अभी बताएंगे। पहले तो कथन तो ऐसा ही आएगा, कितना है संख्या उसको कह देंगे। सिद्धों के अनंत विभाग बता दिया, हर एक में कितनी उतनी है, उतनी है ना, अनंत विभाग ये समानता है, उसके संख्या समान नहीं है सब में, वो श्रेणी में बताएंगे। श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की है, अनंत रूप निधा और परम्परोप निधा। अनंत रूप निधा ने वर्गणा वर्गणा प्रति क्या डिफरेंस है चाहे उसको बताएंगे, और परम्परोपनिधा में गुणश्रेणी की बात करेंगे, गुणश्रेणी नहीं गुणहानि की बात करेंगे। अभी वहां ट्रांसलेशन में गुणश्रेणी चल रहा है तो उसी वही। अनंत रूप निधा की अपेक्षा जघन्य वर्गणा में कर्म प्रदेश बहुत है। देखो अनुभाग तो नाम तो जघन्य है और आप कहते उसमें बहुत है, तो जघन्य नाम तो अनुभाग की अपेक्षा दिया है। जघन्य वर्गणा का है ना, जघन्य क्यों नाम दिया? अनुभाग मिनिमम है, अभी हमने आठ देखा था, परंतु वहां प्रदेश परमाणु मैक्सिमम है, परमाणु परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ परमाणु अधिक है, सबसे अधिक है। उनसे द्वितीय वर्गणा में कर्म प्रदेश विशेषहीन है, विशेषहीन ने एक चय से कम है। इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक उत्तरोत्तर विशेषहीन है। ये सभी वर्गणाओं को एक साथ लिए उन्होंने, विशेषहीन विशेषहीन चले जाएंगे। विशेष का प्रमाण अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र हैं। विशेष है निश्चय। हाँ, जगन्य की बात है ना, पहली जगन्य वर्गणा से दूसरी वर्गणा, यानी वो पहले गुणहानि की बात है, द्वितीय गुणहानि में आधा आधा कहेंगे, फिर भी उसका कथन उतना ही रहेगा। अनंत को अनंत ही कहेंगे फिर भी। अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है? ओज और युग्म में होते हैं। तो ओज और युग्म ने जीव, जो हमने अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या देखी थी ना, कितनी जीव राशि से अनंत गुणी, वो युग्म राशि है, कृत युग्म राशि है। और ये सिद्धों से अनंत में भाग नम, जहाँ हमने इतनी बार पढ़ा उसको, वो सब जगह कितनी कृत युग्म राशि होगी। अब आपका प्रश्न क्या है? हाँ, एक से अभिभाग प्रतिच्छेद। आपका प्रश्न है उसको युग्म राशि क्यों कहा? ये तो जगन्य की बात ली थी ना हमने, जगन्य में और उत्कृष्ट कहेंगे। एक तो मिनिमम पॉसिबल, हाँ मिनिमम पॉसिबल वृद्धि बताता है। हाँ, वो युग में है बराबर। देखो इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक उत्तरोत्तर विशेषहीन है। विशेषहीन है वो नंबर ऑफ परमाणुओं की बात है। विशेष का प्रमाण अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है। इसका प्रतिभाग भी अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है। वह भी तीन प्रकार का है, अवस्थित भागहार, रूपोण भागहार और छेद भागहार है। अवस्थित भागहार यानी समान भागहार, रूपों ने एक एक घटता हुआ, और छेद भागहार ने अपूर्णांकों में। इन तीन भागहार द्वारा अनंत रूप निधा को जानकर प्ररूपणा करनी चाहिए। प्रेरणा व्यंजन थे, वो नहीं बताए तो अच्छा है। परम परोप निधा की अपेक्षा, जघन्य वर्गणा के कर्म प्रदेशों की अपेक्षा, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे व सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र स्थान जाकर दुगुनी हानि होती है। यानी इतनी वर्गणाएं जाएगी, हाँ तब दुगुनी हानि होती है, यानी संख्या आधी हो जाएगी। देखो हमने बहुत सारे स्पर्धक देखे ना, पहले तो हमने स्पर्धकों की अपेक्षा देखी थी बात, आठ आठ वाले होते, फिर सोलह सोलह होते, अभी उसको भूल जाओ। अभी एक एक वर्गणा, यानी हमने वो आठ नौ दस वाली चार वर्गणा देखी थी यहाँ, फिर सोलह सत्रह अठारह वाली देखी। अंतर को अभी इसमें नहीं लेना, सभी वर्गणाओं को एक साथ रखेंगे हम तो नीचे से ऊपर तक प्रदेशों की हानि क्रम से होती चली जाती, विशेषहीन विशेषहीन हो जाता है। तो जो अभी बताया सिद्धों से अनंत वे भाग इतने स्थान जाने पर इसकी संख्या आधी हो जाती है, पहले 256 माना तो 128 हो जाती है, बीच में इतनी वर्गणाएं चली जाएगी तब। हाँ? अंतर है अनुभाग की अपेक्षा, परंतु प्रदेश की अपेक्षा अंतर नहीं हो सकता, वो एक चय से घटेगा, नहीं तो गुणहानि नहीं कहेंगे हम उसको। कैसे होगा? प्रदेश की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक वर्गणा, एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा, दूसरे स्पर्धक में इतनी, वो सब वर्गणाओं की हमने एक के ऊपर एक रख दिया विदाउट अंतर, और उसमें अभी प्रदेशों को लगाओ, क्योंकि इसीलिए हमने 256 ये इस तरह से रखा था ना, वो बीच में अंतर तो अनुभाग की अपेक्षा है। प्रदेशों का जो है क्रम घटना, क्योंकि एक गुणहानि में तो अनेक स्पर्धक होंगे, अनंत स्पर्धक होंगे, एक गुणहानि में जो आधा होता है ना प्रमाण, उसमें तो कितने सारे स्पर्धक चले जाएंगे। तो एक की वर्गणा है फिर दूसरी की वर्गणा, वो अंतर तो अनुभाग की अपेक्षा, उसको समझ लेना, प्रदेशों की अपेक्षा देखेंगे तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसको हम गोपुच्छ कहेंगे नहीं, हाँ गुणहानि नहीं कह सकेंगे। प्रदेशों में अंतर क्या, वह प्रदेश ही नहीं तो अंतर क्या कहेंगे, नहीं समझे। उस अनुभाग वाले परमाणु ही नहीं है ऐसा लेना, परमाणु होते तो परमाणु की संख्या बताते हम, 8, 9, 10, 11 इतना अनुभाग वाले तो परमाणु पाए जाते हैं, उनका हमने लिख दिया, परंतु 12, 13, 14, 15 वाले परमाणु ही नहीं है, तो उसमें हम प्रदेश रचना कैसे दिखाएंगे। तो 11 के बाद 16 का नंबर आता है उसको रखेंगे, तो 11 में जितने परमाणु हैं उससे 16 में एक चय कम होगा, हाँ अभी चय आधा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अनंत स्पर्धक चले जाएंगे तब चय आधा होगा, हाँ अभी गुणहानि नहीं हुई, अभी स्पर्धक चले जाएंगे ऐसे बहुत सारे। चलो अच्छा हम चर्चा करते, मेरा भी क्लेरिटी बढ़ती है उसमें, ये प्रदेशों की अपेक्षा अंतर हो ही नहीं सकता ना, उतने अनुभाग वाले परमाणु ही नहीं वहां पर। अब आगे देखो, इतने स्थान जाकर दुगुनी हानि होती है, दुगुने हानि होती है ना आधे होते हैं संख्या, इस प्रकार अंतिम दुगुन हानि तक उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने हीन कर्म प्रदेश है। यहाँ दुगुने द्विगुने हीन है, स्पर्धकों में हमने 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा देखा था, अब यहाँ प्रदेशों में दुगुने दुगुने हीन कहेंगे, यानी 256 से 128 हुए, फिर 128 का आधा 64, फिर उसका आधा 32, उसका आधा 16, हाँ यहाँ तो प्रति गुणहानि के पहली वर्गणा की बात है, टोटल द्रव्य आधा होगा उसकी बात यहाँ अभी नहीं आई है। यहाँ दुगुण हानि का विधान कहते हैं, ये हानि जो होती है दुगुण हानि यानी आधा हो जाना, 2 गुना हानि ऐसे इनकी भाषा है। यथा अभवे सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र निषेक भागहार विरलन करके, ये निषेक भागहार किसको कहते हैं बोलो, याद है किसी को, 2 गुणहानि को कहते हैं, तो 1 गुणहानि का प्रमाण भी इतना ही आनंद विभाग सिद्धों के, अभी 2 गुणहानि भी उतनी ही कहेंगे ना, कथन तो उतना ही होगा, तो निषेक भागहार को क्या करना, विरलन करना। विरलन, हाँ जैसे हम पहले हमारी गणित में 16 को विरलन करते थे, हाँ जघन्य वर्गणा के प्रदेशों को, जघन्य वर्गणा में जितने प्रदेश है, यानी पहला निषेक जो हम कहते थे, पहले निषेक को क्या होता है, हमें चय का प्रमाण मिलता है, पहली वर्गणा में जितने प्रदेश है नंबर ऑफ परमाणु डिवाइडेड बाय 2 गुणहानि का प्रमाण, तो चय का प्रमाण आएगा। प्रदेशों को समखंड करके देने पर विरलन अंक के प्रति वर्गणा विशेष का प्रमाण प्राप्त होते, वर्गणा विशेष यानी वर्गणाओं का चय, ये तो हमेशा का उदाहरण है। अभी उन्होंने विरलन करो समखंड करो अपनी भाषा में कहना है तो नंबर ऑफ परमाणु जघन्य वर्गणा में जितने हैं डिवाइडेड बाय 2 गुणहानि, तो संख्या क्या आएगी, चय, हाँ 256 तो पहले जो संख्या है उसको दो, हाँ पुनः इसमें से एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर, यानी एक चय को ग्रहण कर, एक एक अंक प्रति चय का प्रमाण आया, उस एक चय को ग्रहण कर जघन्य वर्गणा में से कम कर देने पर द्वितीय वर्गणा का प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरी वर्गणा में हाँ किसका, चय का प्रमाण उन्होंने बता दिया पहले, वो भी सिद्धों से अनंत विभागी है। ये विशेष का प्रमाण यहाँ लिखा है, देखो अभी श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की लिखा है ना, उसमें तीसरे लाइन में अंत में विशेष का प्रमाण अभवे सिद्धों से अनंत गुणा है ना। ये भाग जिसको देना है वो भी संख्या उतनी है, जिसको भाग देना उसकी है, और उसका उत्तर भी उतना ही आता है। निश्चय हुआ तो पहले वर्गणा में जितने परमाणु है उसमें से एक छह माइनस करो, बाद करो, तो दूसरे वर्गणा के परमाणुओं का प्रमाण आएगा। 256 में से अभी हम कहें 256 डिवाइडेड बाय हम 8 की गुणा नहीं करेंगे, तो 16 से भाग दिया तो 16 आए, तो 16 घटते गए, 256 में से 16 घटाए कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। इस तरह से एक एक छह घटाना, इस प्रकार एक एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को उत्पन्न उत्पन्न ने उत्तरोत्तर वर्गणा में से कम करके निषेक भागहार का अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। निषेक भागहार का अर्ध भाग यानी एक गुणहानी, क्योंकि चय जो घटना है वो तो एक गुणहानी तक ही घटेगा, फिर चय का प्रमाण बदलेगा। ख्याल में आता है, ये अटपटी भाषा है ना, तो हमें ऐसा लगता है कहाँ तो निषेक भागहार का आधा तक यानी क्या, एक गुणहानि तक उसको घटाना। वहां की वर्गणा के कर्म प्रदेश प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों की अपेक्षा दुगुने हीन होते हैं, यानी जब हमने 16 से भाग दिया था, 8 बार जब हमने 6 घटाया, तो वहां वो 256 से 128 हो गए। देखो 256 में से एक बार 16 घटाए, दो बार 16 घटाए, 8 बार 16 घटाने कितने घटाए, 16 8 28 से तो 128 घटाए, तो 128 बचे ना। तो दूसरी गुणहानि प्रारंभ होती है, अब यहां चय आधा हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो आधा होगा। देखो दुगुने हीन होते, फिर इस दुगुने हीन वर्गणा के कर्म प्रदेश पिंड को अवस्थित भागहार के समखंड करके देने पर एक एक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष का प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहां का जो है ना 128, अभी उसको फिर अवस्थित भागहार कौन सा है, वही दो गुणहानि वाला निषेक भागहार जिसको कहते हैं, तो 128 को हमने 16 से फिर भाग दिया तो 8 आया, तो यहां का चय होगा 8। अवस्थित भागहार है ना, निषेक भागहार की बात है, क्योंकि हर बार जो है हर एक गुणहानि के लिए प्रमाण यही, पहला जो पहली वर्गणा है उसको निषेक भागहार से यानी दो गुणहानि से भाग देंगे तो चय आएगा वहां का। तो यहां जो अवस्थित भागहार लिखा है ना, अवस्थित भागहार है ना निषेक भागहार, देखो दुगुणे हीन वर्गणा के कर्म प्रदेश पिंड को अवस्थित भागहार के समखंड करके देने पर भागहार के भागहार में एक मिनट ऊपर देखती हूं मैं, पुनः एदम दुगुण हीन वग्गण कम्म प्रदेश पिंडम अवट्ठित भागहारस्य समखंडम कादून दिन्ने। अच्छा अवस्थित भागहार को समखंड करना यानी 16 को बिखेर देना, उसका विरलन करना, और उसमें ऊपर की जो प्रदेश पिंड है उसको समखंड कर देना, यानी 128 को 16 में समखंड करके देगा तो क्या होगा, 8 आएंगे। हाँ एक एक अंक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ जो दूसरे गुणहानि का चय आएगा, विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि के विशेष से यह विशेष दुगुना हीन है, विशेष यानी चय से यहाँ वाला चय आधा है, क्योंकि अवस्थित भागहार के द्वारा पूर्व में विभक्त हुई राशि का आधा भाग क्षीण होता हुआ देखा जाता है। यानी हमने देखा था ना कि निषेक भागहार से वो पहली जो राशि थी वो आधी आधी हो गई है। यहाँ एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर यानी चय को ग्रहण कर द्वितीय गुणहानि के प्रथम वर्गणा में से कम कर देने पर अभी 128 में 8 निकालना है, बाद करना, 120 रह जाएगी, उसकी ही तदनंतर द्वितीय वर्गणा का प्रमाण होता है, यानी द्वितीय गुणहानि की द्वितीय वर्गणा का प्रमाण आता है। इस प्रकार यहाँ पर भी एक एक विशेष को कम करके अवस्थित भागहार के अर्धभाग प्रमाण विशेषों को क्षीण होने तक वहां दुगुनी हानि होती है। निषेक भागार का अर्थ भाग का अर्थ ही होता है एक गुणहानि। इस प्रकार जानकर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र दुगुण हानियों के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए। ये गुणहानियां कितनी है, नाना गुणहानि जिसको कहेंगे, वो भी अनंत है। सब अनंत में व्यवहार चलता है यहाँ पर। यहाँ तीन अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पभूतव। प्ररूपणा अवगत है क्योंकि एक गुणहानि स्थानांतर और नाना गुणहानि स्थानांतर अस्तित्व परंपरोपनिधा से ही सिद्ध है। उसका का शब्द रह गया है, एक गुणहानि ठानंतरस्य नाना गुणहानि ठानंतराणम च। एक गुणहानि स्थानांतर और नाना गुणहानि स्थानांतर का चाहिए, का शब्द डालो बीच में। हाँ, क्योंकि हिंदी में दोनों को मिलकर का लगाने की पद्धति है, प्राकृत में दोनों को अलग अलग लिखा है, इसको स लिखा है, उसको राणम ऐसा लिखा है, च तो बीच में आता है। नहीं समझे, वो स लगाया क्योंकि वो एक वचन है, एक गुणहानि स्थानांतर और अनेक गुणहानि स्थानांतरों के, तो उसको स्थानांतराणम ऐसा आया, दोनों को षष्ठी विभक्ति लगाई। परंपरोपनिधा बता दी है, इससे प्ररूपणा सिद्ध ही होती है ना। प्रमाण का कथन करते हैं, नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर शलाकाओं यानी नंबर ऑफ गुणहानियां, नाना गुणहानि का प्रमाण और एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का प्रमाण अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र हैं, वो प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। अल्प बहुत्व का कथन करते हैं, अब दोनों को ही सिद्धों से अनंत वे भाग कहा तो क्या दोनों समान है, इसलिए अल्प बहुत्व कहते हैं। कथन तो दोनों का समान है, तो पहले स्थान पर लेते हैं, नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर शलाकाएं सबसे स्तोक है। फिर दूसरे पॉइंट पर, उनसे एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर अनंत गुणा है। गुणकार क्या है, गुणकार भी उतना ही है, गुणकार अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण है। देखो, उसको उसी राशि को उससे गुणा किए तो भी वो ऐसा ही कहेंगे, सिद्धों से अनंत विभाग। इस प्रकार श्रेणी प्ररूपणा समाप्त हुई। अब अवहार का कथन करते हैं, अवहार यानी उसका भागाकार निकालते हैं ना। प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों के प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, तो कहते हैं अनंत काल द्वारा अपहृत होते हैं, यानी दूसरी भाषा में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परमाणु डिवाइडेड बाय प्रथम वर्गणा के परमाणु इज इक्वल टू अनंत। अब यहाँ सब अनंत का ही कारोबार है ना। हमें तो वो तो क्या करोड़ों अब्जों की फैसिनेशन है ना। तो जिसको नंबर का फैसिनेशन है उसको इसमें आना चाहिए, अनंत में पेट नहीं भरता। देखो, अनंत काल द्वारा अपहृत होते क्योंकि सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर, देखो इसकी भाषा समझ लेना, सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करना है ने क्या है, पूरे द्रव्य को टोटल नंबर ऑफ कर्मों प्रदेशों को पहली वर्गणा के प्रदेश की जो संख्या है उससे भाग देने पर, क्योंकि उसका हमने एक यूनिट बनाया, ऐसे कितने आएंगे ये बताना चाहते हैं। डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक पाए जाते हैं, ये वर्गणा को यहाँ निषेक कहा है हो, ये गणित की भाषा है। यहाँ यानी पहले वर्गणा में जितने परमाणु है उसी को यहाँ वर्गणा को यहाँ निषेक कहा है, परंतु यहाँ स्थिति की बात नहीं हो रही है, यानी कर्म प्रदेशों में अनुभाग की अपेक्षा जो हम अभी प्रदेश रचना देख रहे हैं उसकी बात हो रही है। अनुभाग की अपेक्षा ही अनुभाग का तो हमने एक एक से बढ़ता हुआ, और उसमें भी प्रदेश रचना अलग है ना, कितने अनुभाग वाले कितने परमाणु हैं उसकी अपेक्षा प्रदेश रचना है, और हमने जो पहले देखी थी स्थिति की अपेक्षा प्रदेश रचना देखी थी, निषेक रचना जिसको कहते हैं। परंतु ये जो नाम टर्मिनोलॉजी जो है, सभी टोटल द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, अभी हम ये वर्गणा की बात करो क्या वहाँ निषेक रचना की बात करो, उसको पहला निषेक कहेंगे, जितने वहाँ वर्गणाएं होगी उसको हम स्थिति कहेंगे। ये गणित की टर्मिनोलॉजी है, नाना गुणानी, फिर उसको आपस में गुणा करेंगे दो दो रखकर, तो उसको अन्योन्य भाषिक अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहेंगे। तो हमेशा ये जो एक क्षय घटते हुए जो प्रमाण होता है गुणहानियों का, जहां पर कहीं रचना होती है तो वहां पर जो पहला निषेक है उसको डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर टोटल द्रव्य आता है, या उल्टा कहेंगे तो टोटल द्रव्य को डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो पहला निषेक आता है। परंतु यहां गुणहानि का प्रमाण अनंत में है, और जहां हम स्थिति की रचना देखते थे वहां सागरों में असंख्यात में आती थी। यहां डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों के उत्पादन की विधि जैसे द्रव्य विधान में कही गई है, ये दसवीं पुस्तक में हमने देखा था, वैसे कहकर ग्रहण करना चाहिए। द्वितीय वर्गणा के कर्म प्रदेश प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, अभी दूसरे वर्गणा में प्रदेश कम हो रहे क्या बढ़ रहे हैं, थोड़े कम हो रहे, तो भागार में क्या होगा, भागार बढ़ेगा। अभी तो हमने डेढ़ गुणहानि कहा, तो अभी डेढ़ गुणहानि से बढ़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एट सर्टन पॉइंट दो गुणहानि भी हो जाएगा, और गुणहानि इतना बढ़े जाएंगे हम दूसरी गुणहानि में तो तीन गुणहानि हो जाए, डबल होगा ना, द्रव्य की संख्या आधी होगी तो भागार डबल हो जाएगा, और बीच में प्रति निषेक थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो कितने, तो साधिक डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल द्वारा अपहृत होते हैं। ये तो आसान है ना समझना, भागार क्रम से बढ़ रहा है, द्रव्यों की संख्या परमाणुओं की कम हो रही है तो भागार बड़ा होगा। यथा संदृष्टि में सब वर्गणाओं का द्रव्य यह है 3072, हमने 256 से लेकर 16-9 तक देखे थे ना, सबकी टोटल करेंगे तो 3072 होती है। प्रथम वर्गणा के भागार स्वरूप डेढ़ गुणहानि का प्रमाण यह है वो 12। अब डेढ़ गुणहानि का विरलन कर, यानी 12 को हम विरलन करना, समस्त द्रव्य को समखंड कर देने पर, यानी अपनी भाषा में 3072/12, एक एक अंक के प्रति प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों का प्रमाण प्राप्त होता है, यानी एक एक अंक के प्रति कितने हो गए 256 आए जाएंगे। हमने क्या किया, डेढ़ गुणहानि को विरलन कर दिया, बारह बार लिखा एक एक, और 3072 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो सब में समान, तो हरेक के प्रति 256 आए, बराबर है ना। हाँ, अब देखो, फिर उन डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणाओं को द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर एक एक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष अवस्थित रहता है। अभी इसको 256 को 240 से भाग देंगे तो एक पूरा, और कितना रह गया, 16 रहते बाकी, 16 रहेंगे ना, यहां लिखा ना, यानी ये 12 बार प्रथम वर्गणा है, तो हरेक में से हमने 240 लिए, तो हरेक के ऊपर 16 बचेंगे, 16 कितनी बार बचेंगे, 12 बार, डेढ़ गुना नहीं है ना, 12 बार बचेंगे, तो क्या उसमें से 240 वाला पूरा एक निषेक बनेगा कि नहीं बनेगा? 16 इंटू 12 कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 12 180 आते हैं, और उसमें और 16 मिला 196 हो जाएंगे, तो पूरा एक निषेक नहीं बनेगा। पूरा एक निषेक बनता तो हमारा जो 12 का है वो भागकर 13 हो जाता, परंतु इतना तो नहीं है, तो 1 point something हो जाएगा। अपूर्णांकों में होगा ना, 12 है अभी, 12 पूर्णांक का भी समथिंग बढ़ेगा अभी, अभी उसको देखेंगे यहाँ पर। विशेष अवस्थित रहता है, यानी वो 16-16 बचते हैं। यहाँ तक हम आए 105 पृष्ठ पर। अब यहाँ अपनीत द्वितीय वर्गणाएं डेढ़ गुणहानि मात्र होती हैं। अपनीत यानी माइनस की हुई, क्योंकि 256 में से हमने 240-40 घटा दिए, तो कितनी मिली हमको वर्गणाएं? 12 मिली ना, 256 12 बार था, उसमें से हमने 240-240 घटा दिए, तो 240 भी कितनी बार मिला? 12 बार, और हर एक के ऊपर 16-16 बाकी रहे, तो अपनीत का अर्थ समझ में है? हाँ, माइनस किए हुए, डेढ़ गुणहानि मात्र होती है। अपनयन से शेष रहे वर्गणा विशेष डेढ़ गुणहानि मात्र होते हैं। वर्गणा विशेष यानी चय जो 16 है, वो भी कितने बाकी रहे? वो भी 16 रहे, सॉरी 12 रहे, डेढ़ गुणहानि रहे। 256 हमारे पास 12 बार थे, डेढ़ गुणहानि बार थे ना, उसमें से 240 अलग निकाले, तो 240 12 बार मिल गए। अब बाकी क्या रहा? 16 रहा, 16 एक चय है, तो चय भी कितने रहे बाकी? 12 बार रह गए। तो ये सभी चय यानी 16 × 12 द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत होकर एक भी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण को पूरा नहीं करते। अब यहां संख्या लिखनी है, यहां ऊपर लिखा ना, अपनीत द्वितीय वर्गणाएं डेढ़ गुणहानि मात्र होती है, यानी 240 × 12 रहेगी, और वर्गणा विशेष भी डेढ़ गुणहानि रहते, यानी 16 × 12 रहेगी, तो 16 × 12 कितने होते हैं? 196 होते हैं। अभी दूसरी लाइन फिर पढ़ी, ये सभी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत होकर 196 को 240 से भाग देने पर एक भी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण को पूरा नहीं करते, एक पूरा नहीं आ सकते संख्या, क्योंकि उससे छोटी है। 196 हमारे पास है, 240 होते तो एक पूरी वर्गणा बनती। क्योंकि एक कम निषेक भागार प्रमाण विशेषों का आश्रय कर एक द्वितीय निषेक उत्पन्न होता है। क्या कहना चाहते हैं? एक कम निषेक भागार कितना होता है? निषेक भागा, एक कम निषेक भागार है 15, तो 16 × 15 अगर होते तो हमारे एक 240 बन जाते हैं, परंतु हमारे पास 16 × 12 ही है। ख्याल में? हमारे पास कितनी बार चय है? 12 बार। यदि 15 बार होते तो हमारी द्वितीय एक वर्गणा हो जाती, परंतु डेढ़ गुणहीन मात्र विशेष, एक कम निषेक भागार मात्र विशेष नहीं होते हैं। डेढ़ गुणहानि मात्र विशेष यानी 12 बार निषेक, एक कम निषेक भार यानी 15 निषेक नहीं हो सकते, ये विशेष नहीं हो सकते, क्योंकि गुणहानि के एक अंक कम अर्ध भाग मात्र विशेषों से हीन के उतने मात्र होने का विरोध है। वो कितने हीन है? तो हम तो झट से बता दे, 15 से 12 कितने कम है? 3 से कम है ना, 3 से कम है, तो इन्होंने गुणहानि की भाषा में बोले, कहा गुणहानि के एक अंक का अर्ध भाग मात्र, गुणहानि का आधा करो 4 हुआ, उसमें से एक कम कर दो 3 हुआ। हाँ, इसीलिए ऐसा समझाना है, क्योंकि वो तो अनंत में है ना बाबा। हमें तो 15-12 तो ठीक है, हम 3 का डिफरेंस है बता देते, परंतु वो 3 क्या है? तो गुणहानि के आधे में से एक कम करो उतना है, इसलिए वो समान नहीं हो सकते। पुनः इसके विरलन का कथन करने पर एक कम निषेक भागहार से डेढ़ गुणहानि को अपवर्तित कर जो लब्ध हो वह विरलन का प्रमाण होता है ऐसा कहलाना चाहिए। यानी विरलन की भाषा में कहना है तो कहते हैं, इसको डेढ़ गुणहानि में मिलाने पर द्वितीय निषेक का भागहार होता है। यानी अभी हमने जो निकाला, कितना निकाला, 196 डिवाइडेड बाय 240 रहेगा ना। पहले तो हमने 240 इंटू हमारे 12 बार मिला था, यानी डेढ़ गुणहानि इतना भागहार था। पहला भागहार कितना था, 256 के लिए। वहां का भागहार कितना था, 12, डेढ़ गुणहानि था ना। अभी दूसरे निषेक के लिए क्या करना है, 12 में कुछ मिलाना है, तो वो कितना मिलाना है, तो 196 बाय 240 मिलाना है। हमारे पास 100 है तो वो उसमें मिलाना पड़ेगा, 196 डिवाइडेड बाय 120। भाग किसका जाएगा यहाँ, 5 × 10, अच्छा 24 का जाएगा ना, 24×5 से, और यहाँ छोटा छोटा ही देना पड़ेगा, 4×3 = 12, 4×0 = 0, 4×4 = 16, 4×9 = 36। मैं नीचे 120 ले रही हूँ, 240 लेना है नीचे। हाँ, ऊपर 196, नीचे 240 है। 12×12 = 272। 196 है कि 192 है, एक मिनट, 16×32, 192 आना चाहिए, वही इसीलिए घोटाला हो रहा है, मैंने हिसाब में घोटाला किया। 16×12 है ना, हाँ, 192 है, 192, अभी हिसाब बराबर आएगा। तो 192 डिवाइडेड बाय 240, सोलह विषांश, 12 का भाग देंगे पहले, फिर 4/5 आते हैं, 4/5, तो वो 12.4 ऐसा नया भागाकार होगा। समझ में है ना क्या, क्योंकि भागाकार बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो ये विरलन की भाषा में बताते हैं, नीचे का पैराग्राफ, पुनः इसके विरलन का कथन करने पर एक कम निषेक भागहार से डेढ़ गुणहानि को अपवर्तित कर, यानी डेढ़ गुणहानि 12 है, एक कम निषेक भागहार 15 है, 12/15 जो लब्ध हो वह विरलन का प्रमाण होता है ऐसा कहलाना चाहिए। इसको डेढ़ गुणहानि में मिलाने पर द्वितीय निषेक का भागहार होता है, उसका प्रमाण यह है। पहले उन्होंने 12/16 − 1 = 4/5 बता दिया, 4/5 12 में मिला देना तो 64/5 आ जाते हैं। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय वर्गणा का द्रव्य होता है, तो 3072 को 64/5 से भाग देंगे तो 240 आता है। अथवा अभी एक क्षेत्र की अपेक्षा बताएंगे, डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्र को स्थापित कर, ये मूल में देखना ऊपर, उसे एक वर्गणा विशेष के विस्तार रूप से और डेढ़ गुणहानि के आयाम रूप से एक श्रेणी से फाड़कर, क्या कहना चाहते हैं, अभी हमारे पास हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या कहते हैं, दो भुजाओं का गुणाकार करते हैं। अब हमारे एक बाजू है 12 और एक बाजू है 256, तभी तो पूरा 3072 द्रव्य आया था, 256×12। अभी हमारा दूसरा निषेक कितने का चाहिए हमको, ये 12 ही है ना, ये 256 बड़ा है, हाँ। अभी हमको कितने का चाहिए, 240 का, 240 चाहिए, यानी 16 वाला एक टुकड़ा फाड़कर इसमें से अलग कर दो, ये बात ख्याल में, अभी ऐसा फाड़ कर अलग किया और उसको इस तरह से इधर अरेंज कर दो, क्योंकि ये तो हमको 240 मिल गया, अभी ये 240 है, तो ये 12 के बदले यहाँ कितना बढ़ेगा ये, हाँ, क्योंकि 240 के प्रमाण से करना है इसको, 240 के प्रमाण, तो पूरा एक करेंगे तो होता नहीं है, तो 4/5 बढ़ेगा यहाँ से, यहाँ कितना है 16×12 है ना, अब 16×12 यहाँ फिट कर दो, हाँ 240 के प्रमाण में उसको करो तो 4/5 होता है, तो ये क्षेत्र इस तरह से बढ़ेगा इसका, तो अभी नया जो उसका गुणकार जो है, ये भागार का जो प्रमाण है 12.45 आता है। श्रेणी से फाड़कर एक कम निषेक भागार मात्र वर्गणा विशेष रूप विष्कंभ और 1.5 गुणहानि आयाम से 1.5 गुणहानि स्थानांतर क्षेत्र के ऊपर स्थापित करने पर साधिक 1.5 गुणहानि भागार होता है। ये अभी हमने करके देखा है वैसा। अब तृतीय वर्गणा के कर्म प्रदेशों के प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, अभी तो हमने 240 देखे थे, अब इसके आगे और एक चय कम होगा, 240 में से 16 जे 224 हो जाते हैं, तो साधिक 1 अधिक 1.5 गुणहानि स्थानांतर काल द्वारा अपहृत होते हैं, यानी अभी 13 में कुछ साधिक हो जाएगा, क्योंकि इसको और एक यहां से हटा ना, अभी 32 को हटा और इसके आगे रख दो, 1.something हो जाएगा, वो 13-12 में मिला दो। यथा पूर्वोक्त विरलन में जो 1.5 गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणा स्थापित है, वे पहला समझना, 12 का विरलन किया, 256 दिए सब जगह, उनमें से प्रत्येक में से तृतीय वर्गणा के प्रमाण को घटाने पर, अभी हरेक में से 224 घटाएंगे तो 32 बाकी रहेंगे, दो चाहिए जितना मैटर रहेगा ना, 1.5 गुणहानि मात्र तृतीय वर्गणाएं उत्पन्न होती है, यानी 12 तृतीय वर्गणा 12 बार हो जाएगी, और एक एक अंक के ऊपर 2-2 वर्गणा विशेष उपलब्ध होते हैं, यानी 32×12 हमारे पास रहेंगे। अब उनको तृतीय वर्गणा के प्रमाण प्रमाण से चाहिए, प्रमाण से अपहृत करने पर साधिक 1 अंक प्रमाण अवहार काल उपलब्ध होता है, 1.something, 32×12 किए हमने, तो 32×12 कितने होते हैं, 12×2=24, 2×3=36, 2×38 384 आए, और हमारा कितना है निषेक का प्रमाण, कितना है तृतीय, 224 है, तो 384/224 1 पॉइंट 1 फुल पॉइंट प्लस समथिंग आए ना, हाँ तो साधिक 1 कहा उसको। यथा 2 अंक कम 2 गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को ग्रहण कर, यदि 1/3 वर्गणा का प्रमाण होता है, क्या कहते हैं, वर्गणा विशेष 16 है, 16 को 14 बार ग्रहण करेंगे तो तीसरी वर्गणा होती है, अब हमारा 16 कितनी बार है हमारे पास, 24 बार है, क्योंकि एक एक में 32 है ना, 12 में से एक एक के प्रति 2-2 विशेष है, ऐसे हमारे पास 24 विशेष है, 14 में से एक पूरा अंक बन जाता है, 14 विशेषों का 1 अंक हो जाता है, एक पूरा तृतीय निषेक होता है, तो 3 गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को ग्रहण कर, यानी 24 है ना, 14 में से एक होता है तो 24 में कितने हो गए, ये इतना सिंपल है त्रैराशिक, कितनी तृतीय वर्गणाएं होगी, इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर साधिक 1 अंक आया। अभी बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तो अश्विन भाई।